सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ता नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पाते वोच्छामि समयसाहुण नमो सुदकेवलीमणिदं।
ये कुंदाचार्य भगवान का समय सार है और उस समय सार के कर्ता कर्म अधिकार के हम 90 नंबर की सूत्र को आज पढ़ने जा रहे हैं। देखो यहां पर हमने देखा था इसके पहले कि जो स्वयं परिणमन करता है वह स्वयं परिणमता है वह करता है, यह बात अपनी चल रही थी क्योंकि वह गाथा शुरू होके भी काफी दिन हो गए, बीच में 4 दिन का हमको थोड़ा सा गैप भी मिला। अपना कौन सा विषय है इस बात को हम जरा भूल भी जाए न जाए इसलिए वो याद करा रहा हूँ कि वहाँ तो ये बात चल रही थी कि दो द्रव्य मिलकर एक कार्य नहीं करते हैं और दो द्रव्यों का एक कार्य नहीं होता है, इस तरह की जो बात थी। उसी तरह एक द्रव्य दो द्रव्यों का अलग अलग, मतलब दो द्रव्यों का दो कार्य नहीं करेगा, एक समय में एक ही पर्याय होगी और वो अपने स्व की होगी। इस तरह से एक 3-4 गाथाएं हमने देखी थी। पिनंग को दे वो तो देखो अब यहां लिखा है वो हम पढ़ते हैं। आपने इसमें फर्स्ट पेज पर ओम परमात्मने नमः श्रीमद् भगवत कुंदाचार्य देव प्रणीत श्री समय सार ऊपर परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ना प्रवचनो श्रीमत अमृत चंद्र सूरी कृता आत्मख्याति ही। यानी ये समय सार जो कुंदाचार्य भगवान का है उसके साथ साथ श्रीमत अमृत चंद्र जो है उनके द्वारा सूरी कृत आत्मख्याति नाम की जो टीका है उसमें भी यहां दी गई है, उसकी बात चल रही है। कर्ता कर्माधिकार अथ आत्मन त्रिविध परिणाम विकारस्य कर्तृत्वं दर्शयति। क्या कहते हैं अथ यानी अभी यहां हवे आत्मा ने त्रण प्रकारना परिणाम विकारनु कर्तापणु दर्शावे छे। ये टाइटल ही क्या बता रहा है समझ में आया? ये जीव के कैसे परिणामों की बात चल रही है मम्मी? हाँ परिणाम विकार, तो ये जो विकार रूप जो परिणाम हो रहा है उसका, उस जीव का वह क्या है, करता है वह जीव, उसका करता पना दिखा रहे हैं। क्यों? यहाँ तो कहते हैं कि भाई आत्मा में राग होता ही नहीं है, अब यहाँ कह रहे हैं कि राग आत्मा उसका करता है। 3 प्रकार के विकार बताए, यानी जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये 3 प्रकार के जो विकार परिणाम है उसका वह जीव करता है। देखो अभी पहले तो बताया था कि भाई जो पर्याय है वो पर्याय का करता वह वही द्रव्य है, अन्य नहीं है। वह अपेक्षा रखते हुए, यहाँ पर बात चलाई जा रही है। तो बिल्कुल ऐसा घोटाला मत करना क्योंकि अपना चालू विषय है ना, उसके अनुषंग से उसके कंटिन्यूएशन में ये बात बताई जा रही है। देखो अभी हम ये गाथा पढ़ेंगे तो हमें और खुलासा विशेष होगा।
ए दे सुयोगो तिमिवो सुद्धो निरंजनो भावो जंसो करे दिभावं उगोगस्ततो कत्ता एतेषु चोपयोगः त्रिविध शुद्धो निरंजनो भाव यंस करोति भावम् उपयोगः तस्य स कर्ता
एनाथि चे उपयोग त्रणविद शुद्ध निरमण भावजे ते भाव कैपन ते करे ते भावनो करता बने एनाथि चे उपयोग त्रणविद शुद्ध निरमण भावजे जे भाव कैपन ते करे ते भावनो करता बने।
देखो यहाँ गाथार्थ में कह रहे हैं एतेषु च अनादि थी आ त्रण प्रकार ना परिणाम विकारो होवा थी। यानी ये क्या, पहले तो हम ये समझते हैं कि अनादि काल से यह जीव विकार रूप परिणाम कर रहा है, तो कौन से विकार कर रहा है? तो उन्होंने उपयोग के तीन भेद यहाँ बताए। यानी एक श्रद्धा का जो दोष है, यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप जो परिणामों के विकार हैं, वह जीव के साथ अनादि से है, इसलिए कह रहे हैं अनादि थी आ त्रण प्रकार ना परिणाम विकारो होवा थी। उपयोग आत्मानो उपयोग शुद्ध जो के शुद्ध नहीं थी ते शुद्ध चे निरंजन एटले अंजन रहित निर अंजन जेनाथी निकली गयो छे निरंजन मलिनता जेमा नथी एवो स्वभाव जे छे शुद्ध छे निरंजन छे एक भाव छे ऐसा इनका भाव है। तो पण ये ओरिजिनली भाव की अपेक्षा शुद्ध नहीं की अपेक्षा यानी द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा जब हम उसको देखते हैं तो वह शुद्ध ही है निरंजन ही है ऐसा भाव स्वरूप वो है। ऐसा होते हुए भी तो पण त्रिविध त्रण प्रकार नो थयो थको स उपयोग ते उपयोग यम जे भावम विकारी भावों ने करोती एटले पोते करे छे तस्य ते भावनो सह ते करता भवती थाय छे। यानी जैसा जिस रूप से वह परिणाम रहा है वो परिणाम का वह जीव यानी यहाँ आत्मा करता है। वो तीन प्रकार के परिणाम विकार जो बताए हैं वह कहीं अन्य कारण नहीं हो रहे या अन्य से नहीं हो रहे हैं। क्यों बात चल रही ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, अपना अपना कार्य प्रत्येक द्रव्य करता है। फिर वह विकारी परिणाम रहे या अविकारी परिणाम रहे, पहले तो हमने ये भी देखा था ना कि जो उद्गल है परमाणु वह अधिक अंश वाले ऐसे स्निग्धांश या रुग्धांश में जाके मिलता है, तो अधिक अंश वाले जो कोई स्कंद है मान लो या परमाणु है तो छोटे वाले को स्वयं परिणाम आता है, ऐसा नहीं है। वह कम अंश वाले जो कोई परमाणु है वह स्वयं ही उस रूप परिणमते हैं। ये बात देखी थी ना, यानी अन्य द्रव्य उसका कर्ता नहीं है, वो उसका जो परिणाम है वो स्वयं कर रहा है। वही बात को यहाँ दोहराते हुए ये समझा रहे, स्वभाव की अपेक्षा हम देखते हैं तो कहते आत्मा तो शुद्ध है, मलिनता रहित है, निर्मलता सहित है। ऐसा होते हुए भी अनादि काल से उसके ये ऐसे विकारी परिणाम हो रहे हैं और उन विकारी परिणामों का कर्ता वह स्वयं है। बस इतनी बात को हमको बता रहे, आसान है, कोई खास बात नहीं है। टीका में देखते हैं, ए प्रमाणे अनादि थी अन्य वस्तु भूत मोह साथे। अब ये अन्य वस्तु हमने किसको कहा था, किसको याद है? हाँ इंदु बेन आपको याद है, अन्य वस्तुभूत मोह ऐसा कहा? सौभाग चंद जी आप बता पाएंगे अन्य वस्तुभूत ये किसके लिए वापरा गया था पहले? यहां पर भी उसी अपेक्षा आ रही, इतना पढ़ोगे तो कोई भी पढ़ के बताएगा। हाँ बोलो, आप क्या कहते हैं? मालूम नहीं, बोलो ना भाई। हाँ, ये द्रव्य कर्म जो है उसकी अपेक्षा अन्य द्रव्य भूत मोह, मालूम है? यानी हमने देखा था वो कर्म की अपेक्षा से उसकी बात चली थी, यानी अन्य द्रव्य है ना वो, तो वो कह रहे हैं देखो हमने तो दो बातें देखी थी ना, कैसा एक, अभी मेरे भी दिमाग से हट गया शब्द, अब भी मेरे याद था, जिसको हम द्रव्य मोह और भाव मोह कह रहे थे ना जी, नहीं वो मिथ्या दर्शन जड़ और चेतन ऐसा कुछ था
ना, जीव मिथ्यात्व
और अजीव मिथ्यात्व, यानी जो अजीव मिथ्यात्व वाली बात है ना वो कर्म की अपेक्षा से ली थी, वो यहाँ वो अन्य भूत वहाँ शब्द
अन्य वस्तुभूत,
अन्य वस्तुभूत जो शब्द था वो
द्रव्य कर्म की बात है,
द्रव्य कर्म वही तो। ए प्रमाणे अनादि थी अन्य वस्तुभूत मोह साथे, यानी ये कर्मों के मोहनी कर्म उसके साथे संयुक्त पनाने लीधे, अभी वो उसमें जुड़ा जा रहा है ना, संयुक्त पना हो रहा है, पोता नामा उत्पन्न थता जे आ त्रण मिथ्या दर्शन अज्ञान अने अविरति भाव रूप परिणाम विकारो तेमना निमित्ते, एटले वो अन्य वस्तुभूत मोहना निमित्ते जो के परमार्थ थी तो उपयोग शुद्ध निरंजन अनादि निधन वस्तुना सर्वस्वभूत चैतन्य मात्र भावपने एक प्रकार नो चेतोपन। अभी ये जो निमित्ते एटले कारण थी, वो बीच में दो डैश है ना, ऊपर की लाइन की और नीचे की लाइन की, उसको हटाकर आगे पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं देखो, आ त्रण मिथ्या दर्शन अज्ञान अने अवृत्ति भाव रूप परिणाम विकारो तेमना निमित्ते, अभी नीचे के लाइन में लास्ट वर्ड, अशुद्ध सांजन अनेक भाव पनाने पामतो थको त्रण प्रकारनो थईने पोते अज्ञानी थयो थको कर्ता पनाने पामतो विकार रूप परिणामी ने जे जे भावने पोताने पोतानो करे छे ते भावनो ते उपयोग करता थाय छे। अभी मैंने कट किया, वो हम देखते हैं, वो स्वभाव की अपेक्षा से बात की है। आत्मा कैसा है तो कहते हैं कि जो के परमार्थ थी तो, यानी उसके निश्चय से तो, या वस्तु स्वभाव जैसा है स्वभाव की अपेक्षा से तो, कैसा है उपयोग शुद्ध है निरंजन है अनादि निधन वस्तु ना सर्वस्वभूत, यानी ये वस्तु कैसा है यानी द्रव्य कैसी है, तो कहते हैं कि द्रव्य तो अनादि निधन है यानी अनादि काल से है और कभी भी उसका अंत आने वाला नहीं है। ये अनादि निधन शब्द कैसा बना है मालूम है आपको वीरेश भाई? अन आदि और अनिधन ऐसा लेना, अनादि निधन यानी उसका अर्थ मर जाएगा ऐसा नहीं, यानी नष्ट होगा ऐसा नहीं लेना। तो ये अ जो शब्द है वो दोनों जगह लगाना है हमें, अनादि यानी जिसके आदि, अन आदि नहीं है आदि जिसकी, और जे नहीं है निधन यानी जिसका अंत, इसका अर्थ ही अनादि अनंत होता है। तो कह रहे हैं अनादि निधन वस्तु ना सर्वस्वभूत चैतन्य मात्र भावपने एक प्रकारणो छे, यानी हमेशा सदैव एक जैसा ही है। कैसा? तो चैतन्य प्रकार है उसका, हाँ चैतन्य मात्र भाव है जिसका, ऐसा वह शुद्ध और निरंजन, ऐसा चेतोपन। अभी क्या हो गया साहब? तो कहते अशुद्ध, वो अभी कैसा परिणमित हो रहा है अशुद्ध, और कैसा ये सांजन, ये सांजन क्या है समझ में आया? नहीं नहीं नहीं, हाँ रांजन मत समझना वो, हाँ रांजन यानी समझे, रांजन यानी समझे क्या वो गढ़ा रहते ना बड़ा, वो जयपुर में उसमें है देखो किले में, उसको रंजन कहते हैं। ये स अंजन यानी मलिनता सहित, आप जो कह रहे बराबर है कि वो कैसा है आपने बोला अशुद्ध, अरे वो तो बिल्कुल शुद्ध के विरुद्ध अशुद्ध ही होगा ना भाई, पर वो निरंजन के विरुद्ध सांजन है, देखो तो ऊपर क्या लिखा है, शुद्ध और निरंजन, और नीचे बता रहे हैं अशुद्ध और सांजन। जैसा शादी हम कह रहे हैं ना भाई, आदि सहित, तो ये अंजन सहित, मलिनता सहित। तो सांजन ऊपर क्या कहा, एक एक प्रकारनो छे, चैतन्य भाव प्रमा भाव पणे एक प्रकारनो छे। तो यहाँ क्या कहते हैं, अशुद्ध सांजन अनेक भाव पनाने पाम तो थको, यानी हर हमेश इनके परिणति जुदी जुदी हो रही है। त्रण प्रकारनो थईने, अनेक प्रकार कहा ना, पोते अज्ञानी थयो थको, कर्ता पनाने पाम तो, यानी अभी वो उन विकारी परिणामों का कर्ता होते जा रहे बनता है। जे जे भावने पोतानो करे छे, ते ते भावनो ते उपयोग करता थाय छे। अब भावार्थ ये समझ में आया अश्विन भाई,
ये उपयोग तीन प्रकार का हुआ है, उसमें निमित्त किसको लिया? द्रव्य कर्म
स्वयं है, वो उपादान है, निमित्त पूछा आपसे। बोल रहे हैं आप,
द्रव्य कर्म है निमित्त, कौन है यहाँ? हाँ, द्रव्य कर्म को निमित्त नहीं लिया, उसका केवल संयोग लिया है। फिर पढ़ना देखो, अन्य वसुभूत मोह साते संयुक्त पणा ने लीधे, ये निमित्त, परद्रव्य का निमित्त। उसके निमित्त से क्या होता है, पोतानामा उत्पन्न तथा त्रण, कौन से त्रण, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति, ये अपने में उत्पन्न हुए भाव है। अब वे तो परिणाम विकारो थे, यानी विकारी परिणाम हुए, जड़ कर्म निमित्त। और यहाँ जीव में अपने में तीन प्रकार के विकार उत्पन्न हुए। अब जे तीन प्रकारे उत्पन्न होते हैं विकार, तेमना निमित्ते, अब उनके निमित्त से उपयोग तीन प्रकार का हो रहा है, ख्याल है ना? विकार में निमित्त जड़ कर्म लिया, और ये जो परिणाम के विकार तीन प्रकार के हुए हैं, उनके निमित्त से उपयोग तीन प्रकार का हो रहा है। फिर से दोबारा पढ़ना इसको देखो, ए प्रमाणे अनादि थी अन्य वस्तुभूत मोह साथे संयुक्त पणाने लीधे, वो वहां जड़ कर्म है पर स्वयं उसके वश होता है, तो क्या करता है, पोतानामा उत्पन्न थता ये त्रण। पहले गाथा में स्फटिक का उदाहरण दिया था कि संयोग में कोई लाल पीला या काला जो कुछ पदार्थ है, उसमें स्फटिक स्वयं उस झाए रूप होता है, उसमें भी वैसे वैसे कलर आते हैं। यदि वो काले पीले पात्र के कारण आते तो वहां कोई लकड़ी रखी है, कोई अन्य वस्तु रखी है, उसमें भी होना चाहिए था, परंतु वैसा तो होता नहीं है। तो ये स्फटिक ही अपनी योग्यता से लाल काला पीला जो कुछ है उस रूप परिणमता है, ये उसकी अपनी उपादान योग्यता है। फिर भी वहां निमित्त पाया जाता है, कोई लाल या पीला फूल वहां रखा है तो उसके निमित्त से उसमें वो झाए आती है, निमित्त कुछ करता नहीं है। अब यहाँ क्या बताते हैं, सामने जड़ कर्म है और जीव यहाँ अज्ञान अविरति और वो मिथ्या दर्शन रूप परिणमित होता है। अब ये उसके जो परिणाम विकार है, तो उपयोग उसके निमित्त से तीन प्रकार का हो रहा है, क्या? फिर दोबारा पढ़ना, उत्पन्न थता जे आ त्रण मिथ्या दर्शन अज्ञान अने अविरति भाव रूप परिणाम विकारो तेमना निमित्त से। अभी अपने ही परिणाम विकार को निमित्त में लिया, एक ही द्रव्य में यहाँ निमित्त और ये उपयोग और उसमें निमित्त नियमितिक परिणाम बता रहे हैं। हिंदू बहन कुछ ख्याल में आता है? हाँ, यानी वहां जड़कर मैंने परद्रव्य को निमित्त कहा और जीव के, हाँ प्लीज
ना बोलो दे।
हाँ, हाँ अविरति भाव, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अभी ये जीव एक ही जीव के अंदर अंदर ये निमित्त उपादान की हाँ, ये अज्ञान रूप जो ज्ञान और ज्ञान रूप जो ज्ञान आप कहते हैं, उपयोग यानी उपयोग जानन रूप क्रिया इतना मात्र लिया, अब वो अज्ञान है, वो मिथ्या ज्ञान है।
नहीं, उसमें ऐसा लेना आप कि यह जो ज्ञान जो आप कह रहे हैं ना उपयोग, वो उसका स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव है ना उसका, उसकी परिणति कैसी हो रही है, ये तीन प्रकार से विपरीत हो रही है। विकार रूप वो निमित्त है ना, ये तीनों तो उस रूप हो रही है, क्योंकि वो जानेगा कैसा, खाली जानना जानना तो श्रद्धा गलत चल रही है उसको नहीं जानेगा, श्रद्धा सही चल रही है उसको नहीं जानेगा। जानने का तो सबको है ना, तो किसे जान रहा है, तो जो खोटा है, इसलिए इसलिए उपयोग तीन प्रकार से विकार रूप परिणाम रहा है ऐसा बताया। वो जो विकार रूप परिणाम रहा है इसमें ये तीन निमित्त है ऐसा समझा है।
तो वो उपयोग तीन रूप हो रहा है इसीलिए वहां अज्ञानी हो रहा है, ऐसा कहा ना। उपयोग है तो शुद्ध, परंतु वो स्वयं अज्ञान रूप परिणत हो रहा है, इसलिए वो तीन प्रकार का हो रहा है। यही बात यहाँ तो समझाएंगे, इस गाथा का विषय ही
है। इंटरनल एक दूसरे के निमित्त कौन है, इस बात का उन्होंने विवेचन किया है। हमने तो देखा था ना उपयोग और लक्षणम, तो ये आत्मा ही उपयोग स्वरूप है। अब वह उपयोग है उसकी परिणति जो चल रही है, उसमें जो विकार हो रहा है जानने में, तो वो उसमें निमित्त ये तीन है, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति परिणाम।
अभी फॉर एग्जाम्पल हम राग की बात करेंगे, जैसे राग हुआ कोई क्रोध रूप परिणमित हुआ, तो उपयोग उसको जानकर उससे भिन्नता समझने के बजाय मैं ही क्रोध रूप हुआ ऐसा वो होता है ना, उपयोग ही क्रोध रूप हो जाता है। यानी उपयोग को ये राग को जानने वाला उपयोग है, परंतु उपयोग उस रूप हो रहा है, राग रूप परिणमित हो रहा है, अभी उपयोग स्वयं राग रूप हो रहा है, तो वो उसका राग का कर्ता कहलाएगा, इसलिए उसके करता है ऐसा कहने में आता है, उपयोग ही उसका करता है ऐसा इस गाथा में बताएंगे।
हमने जो पहले अभी तक जो गाथाएं हम सीखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, वहां तो एक ही बात जो उन्होंने बताई है कि जो परिणमता है वह करता है। अब ये राग रूप स्वयं परिणम रहा है, उसका कर्ता भी वही है, ये बात को यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। देखो अभी ये भावार्थ में और स्पष्टता आएगी। पहला कहूं हतूं के जे परिणमे ते कर्ता छे यह परिणमति स कर्ता, ऐसा आया था ना, तो जे परिणमे ते कर्ता छे, आई अज्ञान रूप थईने उपयोग परिणम्यो, आपके प्रश्न का उत्तर आया। क्या कहा ये अभी हिंदी में क्या लिखा मैं नहीं जानता हूँ, क्या लिखा देखो, आई अज्ञान रूप थईने उपयोग परिणम्यो तेथी जे भाव रूप ते परिणम्यो ते भावने भावनो तेने करता कहो। बात सीधी है ना, अभी ख्याल में आता है अभी ना, आ रीते उपयोग ने करता जानवो, तो उपयोग करता है तो उसमें निमित्त वो तीन विकारी परिणाम है, और वो विकारी परिणाम होने के लिए निमित्त वो जड़ कर्म है, उसको जाने दो, अभी वो बहुत लंबा होगा। जो के अभी देखो और स्पष्टता है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं थी आत्मा करता छे नहीं। अभी ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं को जरा हटा दो, तो क्या कह रहे हैं कि ये जो कुछ विकार रूप परिणमन हो रहा है वह स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो आत्मा उसका कर्ता नहीं है, तो ये शुद्ध शुद्ध ऐसा जो स्वभाव है उसको कहने वाला जो नय है उसका नाम है शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। जैसा स्वभाव है शुद्ध स्वभाव निरंजन स्वभाव एक स्वभाव, उसका कथन करने वाला जो नय वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। तो यहां बता रहे जो के यानी ऐसा होते हुए भी शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं थी आत्मा करता छे नहीं। हम बहुत बार सुनते हैं ना आत्मा अकर्ता छे, अकर्ता छे, अरे आपने स्वभावनी अपेक्षाएं बात करे छे, और यहाँ पर्याय की अपेक्षा करेंगे, यहाँ जो वो परिणम रहा है ना जैसा, उसका वो करता है। क्यों? कि ये जीव की दृष्टि परद्रव्य के ऊपर नहीं जावे कि इसके कारण मुझे ये परिणाम हो रहे हैं, नहीं, ये राग का तू ही करता है, ये मूर्खता यानी अज्ञानता का भी तू ही करता है, ये खोटे भ्रम रूप जो तेरा परिणमन हो रहा है यानी मिथ्या परिणमन का कर्ता तू स्वयं है। देखो ये अकर्ता स्वभाव जो बताया है वो तो स्वभाव की अपेक्षा, और यहाँ परिणमन करने वाला ऐसा जो कर्ता स्वभाव भी बताया है वो इस अपेक्षा के हम परद्रव्यों को कर्ता मान रहे उधर से हमारी दृष्टि हट जाए। ख्याल में अंतर ख्याल में है? अब कहेंगे ये तो अकर्ता स्वभाव ही है, कौन ये आत्मा अकर्ता स्वभाव है, तो ये परिणमन हो रहा है उसका क्या? तो कहते उसका कर्ता ना द्रव्य भी है ना गुण भी है, वो तो पर्याय स्वयं का कर्ता है। षट द्रव्य षट कारक लगा लो, ये जहां जो अपेक्षा होगी वह बात समझना चाहिए। एक दफे हमने कोई बात सुन ली तो उसको सब जगह आप ठोका ठोकी मत करना। श्रीमद जी तो हमारे ऊपर उपकार करके कि जहां जहां जे जे योग्य छे हम जी जाओ है? क्या कहा? देखो जो के शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं थी आत्मा करता छे नहीं तो पण उपयोग ने आत्मा एक वस्तु हुआ थी, ज्ञान और आत्मा एक हुआ थी, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम एम हुआ थी, एक वस्तु हुआ थी, अशुद्ध द्रव्यार्थिक ने आत्मा ने पण करता कहेवामां आवे छे। अशुद्ध क्यों हुआ? कि वो भेद पड़ गया ना उसमें, इसलिए उसको। चलो अबे
देखो यहाँ यही बात बताना चाहते हैं,
हाँ
कि
जी, हाँ जी।
जड़ कर्म के संयोग में आत्मा विकारी होता है और उपयोग उस तीन रूप होता है, तो अज्ञानी को ही अज्ञानी के उपयोग को कहो या उपयोग रूप आत्मा को कहो, ये राग भाव का कर्ता कहा है, परंतु जड़ कर्मों को उसका कर्ता नहीं कहा। क्या ना निमित्त जड़ कर्म का है, परंतु आत्मा स्वयं अपनी योग्यता से राग भाव रूप परिणमित होता है, तो आत्मा को यानी उपयोग को उसका कर्ता कहा है, जड़ कर्म को उसका कर्ता नहीं कहा। पहले गाथा में वो बात आई थी, जो स्वयं परिणमित होता है वह करता है, यह परिणमित सो करता, वो बात यहाँ और स्पष्ट रूप से बताते हैं।
देखो अभी हम मथाड़ू फिर से पढ़ते हैं। हवे आत्मा ने त्रण प्रकारना परिणाम विकारणु कर्तापणु दर्शावे छे, यानी वो तीनों ही जो विकार रूप परिणमन हो रहा है उसका कर्ता आत्मा है, इस बात की सिद्धि कर रहे हैं, दर्शावे छे। जे छे तेने दर्शावे के नहीं हुए तेने दर्शावे। अभी आप सूरज को दिखाओ, अरे छे नहीं ना, कौन है? चांद है। अच्छा चांद को दिखाओ, तो जैसा है वैसा यहां बता रहे। फिर से वही बात आई, ए प्रमाणे अनादि थी अन्य वस्तुभूत मोह साथे संयुक्त पनाने लिधे पोतानामा उत्पन्न थता जे आ त्रण मिथ्यादर्शन ज्ञान ने अविरति भावरू परिणाम विकारो तेमना निमित्ते एटले कारण थी, जो के परमार्थ थी तो उपयोग शुद्ध छे निरंजन छे अनादि निधन वस्तुभूत सर्वस्वभूत चैतन्य मात्र भावपने एक प्रकारनो छे। ये वो कैसा है? भले उसके अंदर अनेक बातें, सर्वस्व भूत ऐसा जो कोई चैतन्य चैतन्यपना है, उस चैतन्य भाव पने वह एक ही है, तो पण अशुद्ध सांजन अनेक भावपना ने पामतो थको, त्रण प्रकारनो थईने पोते अज्ञानी थयो थको, कर्तापना ने पामतो विकारु परिणमीने जे जे भावने पोतानो करे छे ते भावनो ते उपयोग करता थाय छे। अभी वो जो हमने मूल पढ़ा था वही यहाँ उन्होंने रिपीट किया है। जो आचार्य देवे शुं अद्भुत वात करी छे, कहे छे के परमार्थती उपयोग शुद्ध छे निरंजन छे अनादि निधन वस्तुना सर्वस्वभूत चैतन्य मात्र भाव बने एक प्रकारनो छे। यहाँ तीन लक्षण बताए कहो या तीन विशेषण कहे हैं, कौन से हैं? हाँ इंदुबेन, अच्छा आप बताओ बहन, शुद्ध हाँ मम्मी मम्मी शुद्ध निरंजन हाँ आप बताना हाँ और कोई बताएंगे याद है हाँ बोलो गलत सब गलत देखो मैं बताता हूँ हाँ नहीं देखो देखो वहां कंपैरिजन किए मैंने बताया था आपको कंपैरिजन किए देखो शुद्ध निरंजन और एक बताया वो एक कैसा है उसके अनादि निधन चैतन्य सर्वस्व भूत ऐसा चैतन्य वो बात बताकर उसको एक सिद्ध किया है और आगे पर है वो उसको कैसा कहा है अशुद्ध सांजन और अनेक प्रकार है देखो 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 लक्ष्मी बहन बात ख्याल में आई दोनों को कंपेयर वो जो है ना बहन अनादि निधन वस्तु ना ये अनादि निधन वस्तु जो है वो कैसी है सर्वस्वभूत चैतन्य भाव बने छे तेना कारणे ते एक प्रकार नो छे अने अहीं आगळ शुं छे अशुद्ध चौथी लाइन सांजन अनेक भावपना ने पामतो और वो अनेक प्रकार से एक भाव बने होतो ऐसा है चलो अभी जो शू कहे छे कहे छे अभी नीचे जो आचार्य देव कहे ना वो लास्ट परमार्थ थी उपयोग शुद्ध छे निरंजन छे अनादि निधन वस्तुना सर्वस्वभूत चैतन्य मात्र भावपने एक प्रकार नो छे आहा हा आत्मा नो त्रिकाळी ज्ञान दर्शन नो जे उपयोग छे ते शुद्ध छे वस्तु एटले द्रव्य शुद्ध तेना गुण शुद्ध अने तेनो वर्तमान वर्ततो त्रिकाळी कारण पर्याय रूप अंश पण शुद्ध छे निरंजन एटले अंजन रहित मलिनता रहित छे अने अनादि निधन एटले अनादि अनंत छे आ गई ना बाजी वीरेश भाई आपको ही पूछा था कि मैंने अनादि निधन का अर्थ क्या है अभी ख्याल में आ गया नहीं पूछा हो तो अभी यहां ख्याल ले लो ज्ञान दर्शन नो आ उपयोग वस्तु ना सर्वस्वभूत छे एटले सर्वस्वभूत है नहीं वो परिपूर्णतः ज्ञान दर्शनमय ही है चैतन्य स्वभाव है संपूर्ण छे ते उपयोग चैतन्य मात्र भावपने एक प्रकारनो छे आम परमार्थती आत्मा परिपूर्ण शुद्ध छे तो पण अशुद्ध सांजन अनेक भावपनाने पामतो थको त्रण प्रकारनो थईने पोते अज्ञानी थयो थको कर्तापनाने पामतो विकार रूप परिणमीने जे जे भावने पोतानो करे छे ते ते भावनो ते उपयोग करता थाय छे मिथ्यादर्शन अज्ञान ने अविरति रूप परिणामनो करता अज्ञानीनो आत्मा छे जड़कर्म ते भावनो करता नथी देखो देखो यहां क्या बताया ज्ञानी को करता नहीं बता रहे क्यों नहीं बता रहे भाई यहां तो क्या बताया अज्ञानी आत्मा एनो करता छे अभी तो कहते कि जो जैसा जिस रूप परिणमता है वो वही है तो यहां ज्ञानी को क्यों नहीं लिया हाँ डॉक्टर हाँ और आप कर पाएगी कोई बात नहीं हाँ साहब हाँ मेरा प्रश्न ये है कि ये मिथ्या दर्शन यानी यहाँ क्या बताया मिथ्या दर्शन ही बताया ना हाँ अज्ञान और अविरति भाव रूप का कर्ता ज्ञानी को क्यों नहीं लिया क्योंकि जैसा जिस रूप परिणाम में गया उसको उसका कर्ता कहा है शाबाश किताब नहीं ना इसलिए बराबर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि ज्ञानी तो अज्ञान का कर्ता थोड़ी होगा वो तो ज्ञान का ही कर्ता होगा मिथ्या दर्शन का करता थोड़ी होगा तो वो तो सम्यक दर्शन का करता होगा जिस रूप परिणमेगा वो तो उस रूप परिणमता ही नहीं है भाई ख्याल में थोड़ा सा आगे पीछे जाओ तो क्या होता है 8:30 कब बजते हैं ऐसा लगता है ना हाँ चलो चलो चलो
और वो जो शुद्ध निरंजन आप ज्ञानी का कहते हैं ना वो ज्ञानी अज्ञानी दोनों का शुद्ध निरंजन है वो तो त्रिकाली भाव की अपेक्षा बात है उपयोग शुद्ध निरंजन होते हुए भी तीन प्रकार का होता है ऐसी बात चल रही ना तो अज्ञानी का भी और ज्ञानी का भी है, फिर भी ज्ञानी का उस रूप परिणमित होता है अज्ञानी का, और ज्ञानी का अज्ञान रूप होता ही नहीं है तो उसको उसका कर्ता कैसे कहेंगे? ख्याल में नहीं है? अभी जो प्रश्न पूछा था, जो अज्ञान रूप से परिणमता है उसका वो करता है, जो अज्ञान रूप से परिणमता ही नहीं है तो उसको उसका कर्ता कैसे कहेंगे? जो मिथ्यात्व रूप हो रहा है उसको मिथ्यात्व का कर्ता कहेंगे, जो मिथ्यात्व रूप का परिणाम उसका छूट ही गया है, नष्ट ही हो गया है, तो उसको मिथ्यात्व का कर्ता ऐसा कैसा कहेंगे? इसलिए ज्ञानी को उसका कर्ता नहीं कहा।
अब वो ज्ञाता है ये बात यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि वो ज्ञाता है तो वो मिथ्या दर्शन करे और उसको जानते बैठे ऐसा नहीं होगा, वो करे नहीं। अब यहाँ तो दूसरी बात बताना चाहते हैं, मैंने तो ये तीसरा ही प्रश्न आपसे पूछा, यहाँ क्या बता रहे? देखो देखो देखो, ये थर्ड लाइन से पढ़ रहा हूँ बीच में से। मिथ्या दर्शन अज्ञान ने अविरिति रूप परिणाम नो करता अज्ञानी नो आत्मा छे, जड़ कर्म ते भावनो करता नथी। यानी परद्रव्य इन अज्ञान का, इन मिथ्या दर्शनों का वगैरह, उनका कर्ता जड़ कर्म नहीं है, अज्ञानी आत्मा है। ये तो मैंने ज्ञानी के बीच में बात उठा ली जैसा हम समझे, इसलिए अभी क्या कहते हैं? देखो, शू विकार कर्मना निमित्त विना थाई छे, ये प्रश्न में क्या गलती है? हाँ मिली भाई, प्रश्नकार ने प्रश्न पूछा है ये बात नक्की है, तो कौन प्रश्न पूछेगा? जानकार पूछेगा या अनजाना पूछेगा? तो अनजाना है ना, अज्ञानी मान लो, जिसके मान्यता बराबर नहीं है, कुछ गलती अभी उसके डाउट चल रहा है, तो उसमें कौन सी गलती की प्रश्न पूछने में? हाँ ऐसा, अच्छा प्रश्न पढ़ लेना वो। हाँ फिर से मैं पढ़ूंगा, शू विकार, प्रश्नकार प्रश्न करते हैं, शू विकार कर्मना निमित्त विना थाय छे। शाबाश, क्या है यहाँ? वो ऐसा ही मानते हैं कि निमित्त के बिना कार्य ही नहीं होगा। हाँ भले तुम्हारे उपादान से होता होगा, हमारी कोई चिंता नहीं, पर निमित्त चाहिए ना। अरे मांडवली करो, 50-50 करो, यानी निमित्त कार्य में कुछ ना कुछ कार्यकारी है, अकिंचित कर है, ऐसा मानता ही नहीं है, ये उसमें मिस्टेक है। देखो हम जब प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो पढ़ते पढ़ते उसमें कहाँ वो अपने जाल में फंसता है उसको समझना। क्या अश्विन भाई, तो अपने को फोन पर बात करने को अच्छा रहता ना? क्या कह रहे? देखो, शू विकार कर्मना निमित्त विना थाय छे, हा निमित्त विनाश थाय छे, हा का अर्थ क्या? निमित्त विनाश थाय छे, विकार थाय छे ते पर अने निमित्तनी अपेक्षा विना पोता थी स्वतंत्र थाय छे। यानी इस जीव में जो विकार उत्पन्न हो रहे, उस विकार का कर्ता या विकार को कोई मददगार होवे तो मददगार नहीं हुए तो इसके विकार ही नहीं परिणमे, ऐसा हो जाएगा। तो विकार के लिए दूसरे की गरज, जिसके हैं अविकारी होने के लिए भी दूसरे की गरज लगेगी। तो इसलिए तो ऐसी हमारी मान्यता है कि निमित्त से कार्य होता है, इसलिए तो हम गुरु के पीछे लगे कि गुरु मेरा भला कर देवे, भगवान भला कर दे, ऐसा। ये क्या है? ये कोई निमित्त है और निमित्त मेरा कुछ काम कर डालेगा, इसलिए हम सबके माथे में मार के आए, सबके सामने माथे झुकाते हैं कि नहीं हम तो मिली भाई को मदद करेंगे। क्यों? और वीरेश भाई को भी बीच बीच में मदद करेंगे। क्यों? कभी ना कभी काम में आवे ना सब। हाँ अरे जिस समय जो कार्य होना है सो होता है, उसको हम निमित्त अवश्य कहेंगे। अब यहाँ जो बात हुई, अपना शिविर जो हुआ, वो तो जिस समय जैसा होना था सो हुआ, तो हम सारों का उसमें जो निमित्त है तो हम मानेंगे, अरे मैंने ये किया, ये सारा अरेंज किया, सबको इधर से उधर मैं लेके गया, सबको गाड़ी में बिठाया, किसको ट्रेन में बिठाया, किसको इधर, मैंने ऐसा हम बोले। और हमारे अरविंद भाई बोलेंगे, अरे तुम्हारा सामान मैं लेके आया, अभी बात कर रहा है क्या? अरे सामान ना तुमने लाया ना मैंने लाया, वो अपने क्रियावती शक्ति से आया। बोलो, ये हम समझना चाहिए, आप नाराज नहीं होना। आता है अपने क्रिया, हम जरूर कहेंगे कि आपने लाया, हमारे ऊपर मेहरबानी की, हमने बोला भी था उस समय। कैसा मत कहो कि आपने क्रियावती शक्ति से आया, ऐसा मत कहो, ठीक है भाई बोल दे नहीं। मैं समझता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं।
शब्द भी अपने योग्यता से आ रहे हैं।
हाँ ना। भाई ये मूल जो सिद्धांत है ना, उस सिद्धांत को हमें समझना है। बाकी तो लौकिक में हम जरूर कहेंगे कि आप लोगों ने इतना क्या कहते हैं हमें मदद की, इतना आपने डोनेशन दिया, इतना आपने मेहनत की, क्या हमारे मिली भाई ने वो अप्सरा में अप्सरा के सामने जाके नाचे, यानी 10 बार उधर गए, उधर से सामान लाया। वो जेरोक्स वाले का नाम अप्सरा है, आप गलत मत समझना। देखो मैं जो कुछ बोलता हूँ सोच समझ कर बोलता हूँ, गलती भी करता हूँ सोच समझ कर करता हूँ। यानी वो अप्सरा नामक जो दुकानदार है, कम से कम वो 10 बार 15 बार गया होगा, 25 बार तो फोन किया होगा, ये सब उसने किया है। तो हम उनको कहेंगे आपने बहुत हमारे ऊपर उपकार किए। लौकिक में कहना भी चाहिए किससे काम करके लिए और बोले नहीं, वो तो बिल्कुल उसका व्यवहार भी साचा नहीं है। लेकिन अंतरंग में वो बोलने वाले की और सुनने वाले के दोनों के ज्ञान में तो ये बात और श्रद्धा में तो ये बात निश्चित होनी चाहिए, ये भले मुझे गाली दे रहा है, ये भले मेरी निंदा कर रहा है, ये भले मेरी स्तुति कर रहा है, मेरा गुणगान गा रहा है, लेकिन ये तो शब्द का वह करता ही नहीं है और ये सुनने वाले जो शब्द है उसको भी मैं मेरे ज्ञान से जान रहा हूँ। ये मूल बात हमारे हाथ में रखना साहब, मैं तो यही रिक्वेस्ट। अभी कितने दिन क्या बोलते हैं प्राथमिक बातें करेंगे, अभी तो सब अभी आप बोलेंगे मन में आपके विचार चल रहे हैं मैं जानता हूँ। पैसे लेने के टाइम तो कोई बोला नहीं और अभी सब काम हो गया निपट गया, अभी बोलते हैं ये पैसे जो आए वो क्रियावती शक्ति से आए ना, आपने दिए क्या? अरे हमारे पास तो ऐसे डोनर है पैसे दे के आते नहीं है, बोलो क्यों जय बहन क्या करे? अभी मुझे तो बहुत बुरा लगा। हाँ अच्छा आपको भी लगा, बहुत अच्छा। मैं तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन मेरे पेट में कुछ बात नहीं रहती ना। ये वहां के एक भाई हमें मिले, उन्होंने कैसा कहा कि आजकल के जमाने में ऐसा सक्सेसफुल शिविर हमने आज तक नहीं देखा। क्या मालूम लोगों के ऊपर कुछ बात ऐसी हावी हो गई है। हमारे क्या नाम है हेमचंद जी भी बोले कि इतना क्लिष्ट विषय इतने आसानी से समझाया, अब वे भी कर्णा नियोग के सर्व के मतलब जानकार हैं, वो अच्छा उनका अभ्यास है, वो भी हर एक लेक्चर में बैठते थे। विमला जी, वो विमला बहन जो ब्रह्मचारी बहन है जयपुर में रहती हैं, वो भी अटेंड करती थी और उन्होंने तो हमको जनवरी में बुलाया है कि आपको आना ही है। अब क्या करें, घबराना मत, हम नहीं जा रहे हैं। हाँ
वो जबलपुर में उसका कुछ वहाँ प्रोग्राम है
जबलपुर में,
वो तो बोलती है मैं आप मुझे परमिशन दे तो मैं माइक पर सबको इनवाइट करूंगी, आपका पूरा ससंग आ जाना। आप
वो कहते हैं आपके 45 लोग लेके आना, मैं घर में सबको रखने की व्यवस्था करती हूँ। और उनका घर का ही प्रोग्राम है जो कुछ है उनके, ऐसा रहता है कि उनके जो गांव का मंदिर है वो हर साल आपके घर से सारा अरेंज करना है, कल आपके घर से, अगले साल आपके घर से, अगले।
मैंने किसी ने उसके लिए खर्चा करी, इसके भाई सब कर रहे हैं उनकी ओर से, वो जो कुछ वर्ष उसका दिन मनाया जाता है ना
जो कुछ होगा अभी हम
जब उसकी प्रतिष्ठा हुई थी पंच कल्याणक, हर साल उसके उपलक्ष्य में वो कुछ प्रोग्राम रखते हैं।
तो पीछे ही लगी थी रूम पे आया कि 3-3 बार, फिर हम कुछ नहीं बोलते थे, आपका टेलीफोन नंबर लिख के देना और आपके हाथ से लिख के देना, या तो कल नहीं बोलना कि तुमने गलत लिखा, बोलो तो गलत और बाद में कहो कि तुमने गलती लिख लिया। ऐसी होशियार भाई है वो। हाँ बहाना कहते कि मैंने चश्मा नहीं लाया, मैं नहीं लिख सकती, अब लिख के देना, तो हम गलत लिख के देंगे तो आपने खोटा नंबर दिया।
हमने जो संदृष्टि अधिकार सारे पढ़े ना यहाँ पर,
हाँ
मूल में पढ़े थे, इतने पैक पढ़े थे, वो कहती थी कि वो देख कर रोना आया, एक एक पन्ना पलटना था तो ऐसे रुई हाथ में लेके ऐसे ऐसे थोड़ा हो करती थी और फिर अंदर पेपर डालती थी, फिर रुई से वो पेपर और फिर अंदर डाले इस तरह से, तो एक एक पत्ता उसने करके फिर बाद में उसको जो कुछ लिख लिया, जीरोक्स किया, जो कुछ किया है,
यानी जिन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका के अर्थ संदृष्टि पूरा उन्होंने तैयार किया, कुछ जो कुछ मेहनत की ओरिजिनल में से,
और फिर वो पढ़ाई उसमें समझती नहीं थी तो कहीं इंदौर में जाकर पढ़ी भी थी, और अब हमारे पीछे हमको भी पढ़ा होगा,
कह रही थी उसने स्वयं काम किया, उन्होंने पढ़ा उनको माहवार 3,000 रुपया देते थे, और वो किताब अपने हाथ में आई और हमने यहाँ वर्ड टू वर्ड सिर्फ पढ़ा नहीं, सॉल्यूशन किया, सॉल्व किया, हाँ जी करेक्शन भी किया। अच्छा ठीक है, वो भाई हमको कहती हैं, यानी वो व्यक्ति ऐसे कहती हैं कि आपको आना है, आपके कितने जेरोक्स बनाने के हम खर्चा उठाते हैं सब, उसके सपने में तो बहुत चल रहा था। मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत ही मतलब जो कुछ बनाओ बना बहुत अच्छा रहा, ये हमारे मिलिंद भाई के कारण से।
वो देवेंद्र कुमार जी निमच वाले जो है वो तो सबसे अभी टॉप मोस्ट है, बहुत अभ्यास है,
वृद्धग्रह से आप जानते हो वृद्धग्रह देवेंद्र कुमार निमच
पंडित जी, वो आए थे ना वो ब्रह्मचारी जैसे
विजय कुमार जैसे दिखते थे, बहुत वृद्ध,
अंतिम दो दिन थे वहां पर, उन्होंने भी बहुत प्रशंसा की,
उन्होंने तो ये कहा कि आप तो करणान योग में तो व्यवस्थित बताती ही है, उसके साथ साथ द्रव्यान योग का भी इस तरह अच्छा मिश्रण करती हो, उसमें भी आपकी गलती नहीं है। चलो ठीक है, जो कुछ हुआ सो अच्छा हुआ, और लोग चाहते हैं कि बार बार करो, हमारे मयंक भाई यहाँ सुबह बोलते हो साल में 4 बार करो, वहाँ एक नलिनी बेन करके कोई थी, क्या कोकिला बेन, वो कोकिला बेन कही थी कि आपको साल में 4 बार यहाँ आना चाहिए, वो वहाँ नहीं रहती है, हम भी आएंगे, हमने कहा 45 लोग आएंगे, हम बोले मैं खर्चा करूँगी, मैंने कहा 45 लोग आएंगे, हाँ हाँ सबका खर्चा आपको करना पड़ेगा, हाँ बोले आएंगे करेंगे, हमने कहा एडवांस भेज देना, हम वीरेज भाई से सीखे ना, दुधारी का धंधा नहीं करते, यानी लोग ऐसे प्रेरित हुए हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि करणान योग जैसा विषय है, भूगोल जैसा रुक्ष विषय जिसको लोग समझते हैं, वो इतना इंटरेस्टिंग है, अभी आपने अनुभव तो लिया, अधिक क्या बोले, और एक मूल बात बोलना ही रह गया, उज्ज्वला की मौसी वहां आई थी, उनकी तो ऐसी खासियत है, यहां प्रवचन चालू करे तो वहां सप्तम गुणस्थान प्राप्त करती थी, यहां इसलिए नहीं आती है वो, बोले तूने ऐसा चार्ट वगैरह बनाया और बार बार उधर बताती थी तो मुझको जरा भी नींद नहीं आई, दोबारा शिविर लगाओगे तो चार्ट के साथ लगाना। आपको नंबर देता हूं उनका टेलीफोन नंबर, शब्द में एक भी गलती हो तो पूछ लेना उनसे।
उसका लड़का वो राजेश प्रवचन रत्ना करके पहले भाग में आता था शुरू में,
यानी हर लोगों की जो सम्मिश्र भावनाएं जो हमें हम तक आई है वो आपके सामने सबको प्रस्तुत की। अभी और क्या बोलूं, बहुत है मेरे पास बोलने के लिए, छात्र की बात नहीं है, इसके लिए गवाह भी है मेरे पास हा? एक भाई मुझे बुलाए, दिनेश भाई, दिनेश भाई इधर आओ, वो कह रहे देखो धुलिया को आप जानते हैं, धुलिया, तो हमने कहा जानते हैं, तो धुलिया में आपको 5 एकड़ जमीन हम देंगे, और ऊपर से तुम थे हाँ, और हाँ देखा ये, और हम 5 लाख रुपए आपको देंगे, वहां ये भूगोल का सारा तुम उधर जो आपको करना है जैसा उचित समझो आपको हम देंगे। हाँ तू आया था ना पानी पीने के उस समय, हाँ देखो हमने कहा महाराज आप 5 क्या 50 भी दो तो हमको नहीं चाहिए। अरे कहा हमें अभी उसके पीछे लगाते हो, अभी ये बड़वानी है ना, बड़वानी गांव जहाँ हमने कितना 94 फीट 52 गजा जी बड़वानी, वहां के जो कोई मैनेजर है नाम भूल गया मैं, उनका खत आया है, खत नहीं आया, उन्होंने टेलीफोन पे बताया कि यहाँ हमने 10x10 के 10 कमरे 8 कमरे कुछ बनाए हैं, उनमें हमको भूगोल की रचनाएं करनी है, आपके जो कुछ कागजात वगैरह जो कुछ होंगे आप इधर आना, आप बराबर हमको सजेस्ट करना, हम इधर ऐसा ऐसा बनाएंगे। हमने कहा महाराज रहने दो, अभी कितने दुनिया की दारी करेंगे। हाँ ये बात सही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है, अरविंद भाई दोनों को बता रहा हूं, कि हम कहां भटक रहे, अपने स्व से कितने दूर जा रहे, बार बार वो लगता है। नहीं ना, ये तो तकलीफ है, काहे को झूठ बोले। मैं मेरी बात बोल रहा हूं, अन्य की नहीं, पिनांग तेरी भी नहीं। देखो अभी क्या कह रहे, देखो शू विकार कर्मनो कर्मना निमित्त विना थाई छे। हा विकार थाई छे, ये तो नक्की किया, ते पर अने निमित्त नी अपेक्षा विना पोता थी स्वतंत्र थाई छे, दूसरा कोई करा देवे ऐसी बात है नहीं। विकार निश्चय थी पोता थी थाई छे। एक ऐसा निश्चय के तेमा पर वस्तु निमित्त हो, पंते निमित्त विकारनु करता छे एम नथी, तेथी एने निश्चय कयो। प्रश्न, विकार परना निमित्त विना थाय तो विकार स्वभाव थई जशे, ये भी जो कह रहे हैं उसका भी यह अर्थ है कि विकार के निमित्त के कारण से ही विकार होता है, इस बात को अभी वो छोड़ने के लिए राजी नहीं है। विकार पोताती स्वतंत्र थाई छे, एक समय नी पर्याय नी ते योग्यता स्वभाव छे, यानी पर्याय के पर्याय स्वभाव से वो अपने अपने कारण से होता है, ऐसा बता रहे। क्या एक समय नी पर्याय नी ते योग्यता स्वभाव छे, कर्मनु निमित्त हो पन विकार थवामा जड़ कर्म अकिंचित कर छे, एटले जड़ कर्म कुछ भी नहीं करता है। ज्ञान मा जे हीणी अवस्था थाई छे ते पोतानी योग्यता थी थाय छे, तेमा ज्ञानावरणी कर्म काय करतु नथी। ज्ञानावरणी कर्म ज्ञाननी हीनी दशामा निमित्त हो पण ते करता नथी। लौकिक जनो जगत करता ईश्वर ने माने छे, अने कोई जैनो इंटू ब्रैकेट क्या दिया तो स्वामी जी ने नहीं बताया, वो लिखने वालों ने उसको एक्सप्लेन किया है, स्वामी जी ऐसा नहीं बोलेंगे तो वो तो समझ लेना, कोई बताया ना क्या तो समझ लेना है, कोई कौन होता है, कोई एम कहे के तो समझ लेना है कोई मिथ्या दृष्टि एम कहे जे, तो कोई जैनो कहने से वो जैनाभासी है ऐसा समझ लो। कहते हैं कोई जैनो जड़ कर्म ने करता माने छे पन वस्तु स्वरूप एम नथी। शास्त्र मा कथन आवे के ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान प्रकट थवामा आवरण करे, पन ए तो निमित्तनु कथन छे, खरेखर जड़ कर्म आत्माना ज्ञान ने आवरण करतु नथी। जीव मा विकारनी पर्याय उत्पन्न थाय छे ते एनी जन्मक्षण छे। प्रवचन सार गाथा 102 मा पाठ छे के सर्वद्रव्यो मा जे समय जे पर्याय उत्पन्न थाय छे ते एनो स्वकाल जन्मक्षण छे। ये ख्याल में आया? ते पर्याय परथी उत्पन्न थाय छे एम छे नहीं, उचित बाह्य निमित्त हो पन निमित्त द्रव्यना परिणाम नु करता नथी। तत्वार्थ राजवार्तिक मा जे बे कारणनी वात आवे छे ते त्या प्रमाणनु ज्ञान करायवु छे। अभी एक मिनट, जिसको उत्तर आता है बोले नहीं लेकिन सब सोचे, ये तत्वार्थ राजवार्तिक जो है वो एक टीका है, तो कौन से शास्त्र पर की ये टीका है और उनका लिखने वाला, हम जिसको हम ऑथर कहेंगे, वो कौन है, किसको आता नहीं है और किसको आता है, मुझे देखना है। कौन बता पाएगा, हाथ तो उठाएंगे, आप बताएंगे, अच्छा एक आप, दो कर्ता भी बताना है उसका, लेखक, कोई बात नहीं। हाँ आप, आपको जानती हैं कि नहीं, नहीं मान, हाँ आप बोलो। तत्वार सूत्रनी टीका, अरे बीजो एक बीजा एनी टीका नु बीजो नाम खबर छे, आना जेवु छे, तत्वार्थ चतुर्थ राजवार्तिक और दूसरा है ठहर
श्लोकवार्तिक
तो ये क्या
कितनी ही टीका लिखा है और कोई टीका है मालूम है तत्वार सूत्र के ऊपर की अन्य टीका है
बताओ
बोलो
अर्थ प्रकाशिका
और सर्वार सिद्धि और अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है तत्वार्थ सार
ये देखो ये उमा स्वामी जी का जो तत्वार सूत्र है अभी मोक्ष मार्ग भी है मोक्ष शास्त्र भी है राम जी का ये अपने सुमन भाई थे ना उनके पिताजी ने वो अपने पास जो है वो उनके पिताजी ये तत्वार सूत्र जो है वो इतना गजब का ग्रंथ है तो अनेकों को इच्छा होती है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ हम
एक गंधहस्ती महाभाष्य था जो अवेलेबल नहीं है
गंधहस्ती महाभाष्य वो इन्होंने लिखा
समंत भद्राचार्य
अब चलो दरेक किसका गंधहस्त महाभाषा गंधहस्ती दरेक कार्य पोताती स्वतंत्रपणे थाय छे ए वात राखीने एमा निमित्त कौन छे एनु साथे ज्ञान करायवू छे यानी जब निमित्त का कथन आता है वहां ये बात तो यू हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन यू हैव टू एग्री दिस पॉइंट फर्स्ट कौन सा दरेक कार्य पोताती स्वतंत्रपणे थाय छे ए वात राखीने एमा निमित्त कौन छे एनु साथे ज्ञान करायवू छे कार्य पोताती थाय छे ए निश्चयनी वात ने निषेधीने शू कार्यनो करता निमित्त छे एम त्या कहूं छे ना तो प्रमाण ज्ञान ज रहेशे नहीं यानी ऐसा ही हम मानेंगे तो प्रमाण ज्ञान ही नहीं रहेगा क्योंकि प्रमाण में दोनों बात आएगी उपादान की और निमित्त की निश्चय थी परिणति पोते पोता थी स्वतंत्रपणे उत्पन्न थाय छे ए वात ने सिद्ध राखीने એટલે સિદ્ધ રાખીને એટલે એને સાબુત રાખીને એને ઉખેડીને નહીં જોડે નિમિત્તનું જ્ઞાન કરાવ્યું છે તે પ્રમાણનો વિષય છે પ્રમાણ મેં ક્યાં હોતા હૈ કે કિસી કો મુખ્ય યા કિસી કો ગૌણ કરકે બાત નહીં હોતી હૈ દોનો હી બાતો કો ઇક્વલી વહાં બાતે બતાઈ જાતી હૈ ઇસકે આગે કી બાત હમ કલ દેખેંગે હા निमित्त और उपादान की बात
जावानी के ज्ञान से सूजे लो कालो सोवाणी मस्तकण